समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार। गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू आवर प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। वेल, यू लिसनिंग टू शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता सिंह। वी आर टुगेदर हियर फॉर यू एंड विल गिव यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज। आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, इट विल मेक यू वांट टू मेक अ कप ऑफ coffee, I promise that. We also have reports from across our nation and attributes at the end of the program. We'll be telling you about the personalities today and we'll also be beginning first with the headlines.
एयरबस द्वारा संभावित सौर विकिरण जोखिम का हवाला दिए जाने के बाद डीजीसीए ने आवश्यक सुरक्षा अपडेट मिलने तक देश में A320 श्रेणी के विमानों की उड़ान पर रोक लगाई। कई एयरलाइनों की उड़ानें बाधित, दुनिया भर में 6000 विमान प्रभावित।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस एट रायपुर इन छत्तीसगढ़।
सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई।
इंडिया सेंड्स 27 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल एंड ओवर 80 एनडीआरएफ पर्सनल टू श्रीलंका अंडर ऑपरेशन सागर बंधु इन द वेक ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन तितवा। डेथ टोल इन नेबरिंग नेशन रीचेस 123।
चक्रवाती तूफान दितवा के आगे बढ़ने पर मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
एंड इन हॉकी, इंडियन मेन्स टीम डिफीट्स कनाडा 14-3 इन मलेशिया टू एंटर फाइनल्स ऑफ सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट। वेल, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया and today we'll explore India's coffee heritage, one sip many stories. If you're waiting for a sign to have another coffee or the first coffee, this is it listeners. Well, Akarshita, this is making me crave a cup of coffee.
जी हाँ, अगर आप अभी ऑफिस में हैं, घर पर हैं या किसी काम में व्यस्त हैं और आपको लगता है कि आपको छोटे से ब्रेक की जरूरत है, तो कॉफी से बेहतर क्या हो सकता है शगुन। वैसे भी भारतीय कॉफी अपने समृद्ध इतिहास, विविध किस्मों और अनूठे स्वाद के लिए विश्व भर में जानी जाती है। ये एक परंपरा है जो भारत के दक्षिणी राज्यों की पहाड़ियों में सदियों से पनप रही है।
True that, Akarshita. And listeners, I mean, what are you waiting for? This is your sign to make a cup of coffee if you are not already having a cup of coffee. And let us now think of all types of coffee that we enjoy every day. I like having filter coffee. It is a strong decoction mixed with hot milk. This is very popular, as you were also focusing on southern states, very popular in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Or maybe when we do not have enough time on our hands, instant coffee. Obviously, which is widely consumed across India because it's quick and easy, Akarshita.
बेशक, दूध वाली कॉफी या फिर नियमित कॉफी, दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास। अब कुछ दिलचस्प कॉफी की किस्मों को भी जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं एस्प्रेसो, कैपेचिनो, लाटे, मैकियाटो, मोका। ये सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली कैफे स्टाइल कॉफी में से एक है। और शगुन, आपकी फेवरेट कौन सी है?
आई थिंक आई विल पिक लाटे, the smooth coffee with steamed milk, or even Americano black coffee with added hot water. This is preferred by those who like light black coffee. And our summer favorite, how can we forget that? The cold coffee or the iced latte or iced Americano even. And some of us, as you were mentioning, love mocha, the coffee with chocolate.
और सेहत के दीवाने लोग ब्लैक कॉफी बिना दूध वाली सादी कॉफी पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एफागातो भी होता है? ये एस्प्रेसो है जिसे आइसक्रीम के ऊपर डाला जाता है। ज्यादातर लोग रोजाना नहीं पीते लेकिन शहरी कैफे में ये बहुत लोकप्रिय है। तो शगुन, अगर बात करें तो इतनी ढेर सारी किस्में हैं, वैरायटीज हैं, और हमारे इंडिया में ही कितनी किस्में हैं जो पाई जाती हैं।
सो मेनी ऑफ देम एंड एफागातो, दिस इज एन इटालियन डिजर्ट और दिस इज इवन कॉफी बेवरेज मेड बाय पोरिंग अ शॉट ऑफ हॉट एस्प्रेसो ओवर अ स्कूप ऑफ कोल्ड वनीला जेलाटो और इवन वनीला आइसक्रीम, एंड दिस मेक्स मी वॉन्ट टू रन आउट एंड गेट वन कप ऑफ कॉफी फॉर माई सेल्फ। वील हैव इट लेटर।
या, वी विल हैव इट आफ्टर द प्रोग्राम।
राइट, एंड आर लिसनर्स दे विल बी फिल्ड विद प्राइड टू नो आकर्षिता दैट इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कॉफी प्रोड्यूसर्स, रैंकिंग एज द सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी एंड कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 3.5% टू द ग्लोबल कॉफी प्रोडक्शन, एंड दिस अकॉर्डिंग टू द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया।
भारत सालाना लगभग 3.6 लाख टन कॉफी का उत्पादन करता है, जिसका लगभग 70% 128 देशों को निर्यात किया जाता है, जो भारतीय कॉफी की बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। और भारत वैश्विक कॉफी बाजार में और व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। कॉफी उत्पादक देशों में पांचवां सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक है भारत, और दुनिया भर के कॉफी उत्पादक देशों से कुल कॉफी निर्यात में लगभग 5% का योगदान देता है। तो शगुन, जैसा कि चाय का बहुत ट्रेंड है इंडिया में, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग कॉफी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और स्पेशली साउथ की कॉफी, वो फिल्टर कॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं,
जो हमारी लाइक दैट
जी इंडियननेस की एक याद दिलाती है, क्योंकि हमारी जो कॉफी है, जो हमारे देश में अपनी कॉफी है, वो थोड़ी सी तो अलग है।
जस्ट अ लिटिल बिट, यस। एंड लेट्स इलैबोरेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर इन इंडिया इज वन ऑफ द मेजर हब्स फॉर इंस्टेंट कॉफी प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। आकर्षिता विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अकाउंटिंग फॉर नियरली 38% ऑफ टोटल कॉफी एक्सपोर्ट्स, एंड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड कमोडिटीज, कॉफी कंटिन्यूज टू होल्ड इमेंस इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल सिग्निफिकेंस। द टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन कॉफी, वी आर एक्सप्लोरिंग दैट पॉइंट एज वेल, दे आर इटली, Germany, Belgium and the Russian Federation, also UAE, United Arab Emirates. The recent surge in India's coffee exports, it has strengthened the global reputation of Indian coffee and improved income realization for growers, well, particularly in the key coffee producing states.
जी हाँ, कॉफी उद्योग ने बहुत ढेर सारे लोगों को जो है एक तरीके से बिजनेसेस भी दिए हैं, उनको काम दिलाया है। और भारत में कॉफी उद्योग मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों में केंद्रित हैं, जो देश के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 96% हिस्सा है। इनमें कर्नाटक सबसे आगे है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
And the recent reduction of GST from 18% to 5% by the government on coffee extracts, essences and instant coffee, it is a major fiscal step for the sector, major fiscal step. And this change, it is expected to lower retail prices by 11 to 12% and also encourage domestic consumption and enhance profitability for small processors. And that's what it should benefit. The initiative will also strengthen the domestic market base and enhance India's per capita coffee consumption even more.
जी, और आइए शगुन, अब बात करते हैं कि कॉफी भारत में कैसे आई। तो श्रोताओं, बताते हैं कि भारतीय कॉफी का इतिहास 17वीं शताब्दी का है, जब सूफी संत बाबा बुदक मक्का तीर्थ यात्रा से लौटते हुए यमन के मोचा बंदरगाह से 7 कॉफी के बीज लाए थे। उन्होंने इन बीजों को कर्नाटक की चंद्रद्रोण पहाड़ियों में लगाया, जिसे अब बाबा बुदनगिरी कहा जाता है। इससे भारत में कॉफी की खेती शुरू हुई, और शुरुआत में इसे एक बागवानी फसल के रूप में उगाया गया, लेकिन धीरे धीरे कॉफी की खेती का विस्तार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में व्यावसायिक बागानों की स्थापना हुई। और कितनी रोचक कहानी है शगुन, किस तरीके से एक सूफी संत ने जो है वो कुछ बीज लाए थे, अपने मतलब 4-5 बीज लाए थे और उसको लगाया एक पहाड़ी पर, और किस तरीके से आज हम पूरे विश्व में कॉफी को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उसका निर्यात करते हैं। कितनी बड़ी बात है।
द सिनेरियो हैज चेंज्ड सिंस देन आकर्षिता, वेल आकर्षिता वाज टेकिंग अस टू डाउन द मेमोरी लेन, एंड सिंस देन इंडियन कॉफी has evolved into a thriving industry. and with a distinct global identity on the world coffee map, let's put it like that. And India holds geographical indication tags for 5 regional and 2 specialty coffees. Geographical indication tags, they are there. This is a recognition that enhances their premium value in international trade.
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग ने 5 भारतीय क्षेत्रीय कॉफी किस्मों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किए हैं. जैसा कि हम बात ही कर रहे थे शगुन की, जो हमारी कॉफी की वैरायटीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं. और
जस्ट टैड बिट, यस.
हाँ, जैसे कि हमारी कुर्ग अरेबिका कॉफी है, वायनाड रोबस्टा कॉफी, चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफी, अराकू वैली अरेबिका कॉफी और बाबा बुदनगिरीज अरेबिका कॉफी. तो इसके अतिरिक्त भारत की एक विशिष्ट कॉफी मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफी को भी जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ है. तो हम देख सकते हैं शगुन की, जो अलग अलग जगहें हैं उनकी नाम पे हमारी कॉफी के नाम है, जैसे कि चिकमंगलुरु है, एक जगह का नाम है दक्षिण भारत में. तो किस तरीके से किस्में भी अलग हैं, नाम भी अलग हैं और शायद जो टेस्ट भी है, स्वाद भी है, वो भी काफी कुछ अलग है.
ऑफ कोर्स अकर्षिता, एंड लेट मी एड वन मोर, मैसूर नगेट्स एक्स्ट्रा बोल, दिस इज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट अरेबिका कॉफीज विद एंड इट हैज लार्ज बीन्स, ऑल्सो रिच अरोमा एंड फुल बॉडीड फ्लेवर, एंड आर इंडियन प्लांटर्स, they have mastered the art of producing globally acclaimed specialty coffees, and they include one of which you also mentioned, monsooned Malabar as well.
इस मान्यता ने भारतीय कॉफी उत्पादकों को क्षेत्र विशिष्ट कॉफी की अनूठी विशेषताओं को संरक्षित करने, भारतीय कॉफी की वैश्विक छवि को ऊंचा उठाने और अपनी प्रीमियम किस्मों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया है. हमारे देश की विविध ऊंचाई, वर्षा पैटर्न और मिट्टी की स्थितियां भारतीय कॉफी की समृद्ध विविधता और असाधारण गुणवत्ता में योगदान देती हैं. क्योंकि शगुन वो कहते हैं कि जिस तरीके से मौसम होगा, जिस तरीके से वहां का मिट्टी होगी, उस तरीके से उसका टेस्ट भी चेंज होता है. तो हमारे भी जो दक्षिणी भारत की जो कॉफी का टेस्ट है वो उसकी ऊंची पहाड़ियों, वर्षा की जो है, जो मौसम होता है और जो मिट्टी है उससे भी खासा प्रभावित होती है.
वेल यस, दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. एंड कॉफी सर्व्स एज बोथ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली वाइटल प्लांटेशन क्रॉप, एंड दिस इज ग्रोन अक्रॉस 4.91 लाख हेक्टेयर्स in western and eastern Ghats and even in the northeastern region. And you would be amazed to know that the coffee sector sustains the livelihoods of over 2 million people. They are engaged in cultivation, in processing and in trade.
देश की अनूठी पारिस्थितिकी विविधता और लाखों छोटे किसानों की प्रतिबद्धता ने एक ऐसा कॉफी परिदृश्य तैयार किया है जो परंपरा और आधुनिक उद्यम का मिश्रण है. कॉफी उद्योग 2047 तक उत्पादन को 9 लाख टन तक बढ़ाने के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है और भारत का कॉफी क्षेत्र एक नए युग के दहलीज पर भी खड़ा है.
So you're only one sip away from a good mood. We hope you will plan a coffee date, a coffee stepping out with your loved ones after listening to this edition of Parikrama here.
तो श्रोताओं, इस छोटी सी खूबसूरत जिंदगी के लिए एक कप अच्छी कॉफी तो बनती है. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
वेल फर्स्ट वील हेड टू तिरुवनंतपुरम, विच इज सेट टू विटनेस अ स्पेक्टेकुलर शोकेस ऑफ मैरिटाइम स्ट्रेंथ्स ऑन दिसंबर 3rd एज द इंडियन नेवी प्रिपेयर्स फॉर इट्स ग्रैंड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन. द डेमो विल हाईलाइट एडवांस्ड नेवल केपेबिलिटीज अक्रॉस एयर, सर्फिस एंड अंडर वाटर डोमेन्स. वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
The capital is gearing up for Kerala's first ever full-fledged naval operational demo. Warships and naval assets have already taken position in the Arabian Sea. The first rehearsal will be held this evening, followed by a full dress rehearsal on Monday. The grand event showcasing the Indian Navy's strength and combat readiness will take place on December 3rd. President Draupadi Murmu will be the chief guest, with Naval Chief hosting the event. Shanmugam Beach in Thiruvananthapuram has been chosen as the venue as part of the Navy's decision to hold demonstrations outside major naval commands. Cultural programs and the sea cadets' performance will add color to the celebration on December 3rd. A large crowd is expected, and the Navy, along with the state and district administration, has put in place arrangements for smooth public access. Let's listen to Defense PRO Kochi Commander Adil Pillai.
In this, we will showcase our operational readiness, cohesion, and wide range of capabilities through an integrated display of ships, submarines, and aircrafts. This demonstration reflects our unwavering commitment to safeguarding India's maritime interests and contributing to a Viksit and Samrit Bharat. We also hope it inspires the young minds of Kerala to consider a future in the Indian Navy. We look forward to welcoming everyone to Shanmugam Beach.
All eyes are now on Shanmugam Beach for the December 3rd showcase. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
पुणे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक एनजीओ के साथ मिलकर जिले में सर्विकल कैंसर फ्री पुणे कैंपेन शुरू किया है। महिलाओं में इस कैंसर को रोकने के लिए जागरूकता और वैक्सीनेशन जरूरी है। एचपीवी वैक्सीन और समय पर चेकअप से इसे रोका जा सकता है। इस कैंपेन का मकसद रोकथाम, जागरूकता और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं और हमारे संवाददाता से।
एवरी 8 मिनट्स अ वुमन डाइज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। HPV-related cancers are the second most common cancer in women in India. The World Health Organization has taken up a global initiative of eliminating cervical cancer so that 90% of girls are fully vaccinated with HPV vaccine by age 15. Accordingly, the girls in the age group of 9 to 14 in rural areas of Pune district will be given HPV vaccine to prevent cervical cancer. An agreement has been signed with Jeevika Foundation in this regard by the District Council for this comprehensive health initiative. Through this agreement, all girls between the ages of 9 and 14 will be given a free HPV vaccine to prevent cervical cancer. Together with the government, corporates under their CSR and like-minded institutions, the NGO is enabling early awareness and HPV vaccination to prevent cervical cancer and secure a healthier future for girls. This initiative is an important step for the health of women in rural areas as well as for cancer prevention. Through this campaign, awareness will be created among women about cervical cancer. Also, emphasis will be placed on increasing the rate of HPV vaccination. Taking this cancer prevention vaccine will be voluntary and parental consent will be obtained before administering the vaccine. The council hopes that all girls between the ages of 9 and 14 in the district will be given this vaccine by March next year. Organizations like Serum Institute of India, Jeevika Foundation, Union Bank and American India Foundation have extended support for this campaign. According to WHO, with a comprehensive approach to prevent, screen and treat, cervical cancer can be eliminated as a public health problem within a generation. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
Now, at this year's International Film Festival of India, IFFI 2025 in Goa, Andhra Pradesh received special attention and appreciation. Andhra Pradesh State Film, TV and Theatre Development Corporation's beautifully designed float presented between November 20 and 28 was chosen as the best among all the displays at the festival. A report.
Presented with the theme The Heartbeat of Indian Cinema and Tourism, the float brought together lively performances, bright visuals and a strong sense of Andhra Pradesh cultural spirit with 20 live artists performing on it. The float drew large crowds and stood out for its energy and artistic detailing. A major highlight was its beautiful display of the state's famous film shooting and tourist locations. Scenes of Gandikota's Grand Canyon, Aragu's Green Valleys, the mysterious Borra Caves, the calm Papikondalu Hills, the iconic Lepakshi Nandi, the developing city of Amaravati and the striking Erramatti Dibbalu were recreated with impressive craftsmanship. Each part of the float reminded visitors why Andhra Pradesh is a favorite for both filmmakers and travelers. State Culture and Cinematography Minister Kandula Durgesh and AP Film, TV and Theatre Development Corporation MD K.S. Vishwanathan applauded the efforts of the team for their creativity and hard work. This recognition has brought immense pride to Andhra Pradesh. It not only highlights the state's natural beauty and vibrant culture, but also strengthens its place in the world of Indian cinema. Allu Murali for Parikrama, Akashwani News, Andhra Pradesh.
In a major leap towards strengthening public health security, India is set to transform its disease surveillance approach from traditional detective methods to a predictive model by integrating cutting-edge technologies such as artificial intelligence and digital intelligence platforms. We have a report.
According to the National Center for Disease Control, NCDC, AI-based event surveillance systems are already being used under the Integrated Health Information Platform. Talking to Akashvani News, Director NCDC Professor Ranjan Das said that the integration of AI-driven surveillance and technology-enabled rapid response mechanisms promises to transform health security with the potential to save thousands of lives through timely targeted action.
We are trying to move up from our detective system to our predictive system. We are also utilizing artificial intelligence currently also, and we will also utilize it further jointly with the various other ministries as well as various science and technology institutions that we have across the country.
In January 2024, the central government had launched the community reporting tool to strengthen surveillance and ensure timely reporting of unusual health events or outbreaks in the community. Additional director and head of Integrated Disease Surveillance Program, Dr. Himanshu Chauhan, said the community reporting tool is an attempt to encourage community participation in disease detection, especially for early warning signals of outbreaks. For Parikrama with Dipendra Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भारत सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गया है. मलेशिया में आज भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 14-3 से हराया. जुगराज सिंह ने 4, राजेंद्र सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने 2-2 गोल किए. नीलकांत शर्मा, दिलप्रीत सिंह, सेल्वम कार्थी और संजय ने 1-1 गोल किए. फाइनल मुकाबले में भारत का सामना बेल्जियम से होगा. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
आज हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था.
ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए.
बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था. उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगरपालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया. कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथाकथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए.
शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की. 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए. गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया.
1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया. 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की. वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की.
1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया. वे हरिजन सेवक संघ के सचिव थे और उन्होंने 1944 में गोंड सेवक संघ की स्थापना की.
बाद में इस संगठन का नाम बदलकर वनवासी सेवा मंडल कर दिया गया. ठक्कर बापा को संविधान सभा की एक उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था. उन्होंने 1950 में ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी.
ठक्कर बापा सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन की भी हिमायत करते थे. उन्होंने हर जगह इन मिशनों को लेकर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की.
महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा ठक्कर बापा के निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी करने की थी. 20 जनवरी 1951 को 81 वर्ष की आयु में ठक्कर बापा का निधन हो गया। इंडिया पोस्ट ने 1969 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया।
हम इस महान भारतीय देशभक्त को सलाम करते हैं जिन्होंने अपना जीवन शोषित वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया।
हम 29 नवंबर 1885 को शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक और सुधारक राम सिंह कूका को भी याद करते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक राम सिंह कूका पहले भारतीय थे जिन्होंने असहयोग और ब्रिटिश माल तथा सेवाओं के बहिष्कार का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया था।
राम सिंह का जन्म पंजाब के भैणी में हुआ था। एक नवयुवक के रूप में वे नामधारी आंदोलन के संस्थापक बालक सिंह के शिष्य बन गए।
बालक सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले राम सिंह को नामधारी आंदोलन का नेता नियुक्त किया। वो महान महाराजा रणजीत सिंह की सेना का हिस्सा थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह ने सिखों को अपना आत्मसम्मान हासिल करने में मदद करने का दृढ़ संकल्प लिया।
उन्होंने नामधारियों के बीच नई प्रथाओं की शुरुआत की जिन्हें कूका कहा जाने लगा क्योंकि वे ऊंचे स्वर में भजन गाते थे। कूका आंदोलन ने समय के साथ गति पकड़ी और अंग्रेजों ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें कई कूका लड़ाके मारे गए। राम सिंह को रंगून भेज दिया गया और बाद में आजीवन कारावास की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया।
29 नवंबर 1885 को उनका निधन हो गया।
आज भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा की पुण्यतिथि है। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में जेआरडी टाटा का नाम सर्वोपरि है। इन्होंने ही देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस शुरू की थी जो आगे चलकर भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बन गई। इस कारण जेआरडी टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। जेआरडी टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। वे उसूलों के भी बेहद पक्के इंसान थे।
वेल यस, अंडर हिज गाइडेंस सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट साइंटिफिक, मेडिकल एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स इन इंडिया एंड दीज इंक्लूड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एज वेल, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज एंड द नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। Today we are also remembering Indira Goswami, well we know her by her pen name Mamoni Raisam Goswami, the writer, poet, a professor and a scholar as well.
Indira Goswami ne Assam ke charampanthi sangathan ULFA yani United Liberation Front of Assam aur Bharat sarkar ke beech madhyasth ki bhumika nibhane ki rajnaitik pehal karne mein ahem bhumika nibhai thi. इनके द्वारा रचित एक उपन्यास मामरे धरा तरुवाल अरुदुखन के लिए उन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वेल टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन। वेल ऑन हिज बर्थडे टुडे वी विल टेल यू दैट ही अचीव्ड इंटरनेशनल फेम फॉर प्लेइंग द सुपर हीरो इन मार्वल मूवीज ब्लैक पैंथर। Oh, well, his voice, it has been much loved by his fans all over the world and all over the globally. Well, he's acclaimed for his this particular role, Black Panther.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a sheep.
आज परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक कैप्टन गुरबचन सिंह सलालिया की जयंती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के साथ कांगो के पक्ष में बेल्जियम के विरुद्ध बहादुरी पूर्वक प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं में कैप्टन गुरबचन सिंह सलालिया का नाम लिया जाता है। उन्हें 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला में लड़ते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे उस समय केवल 26 वर्ष के थे।
वेल, वी सल्यूट द ब्रेव हार्ट। Today we're also remembering George Harrison, well, the musician singer of Beatles. The Beatles, one of the most important and influential bands in the history of rock music. Well, Harrison was the youngest of the Fab Four, the four members, and was known as the Quiet Beatle.
नवंबर मेरा गहवारा है, ये मेरा महीना है। इसी माह मनवर में मेरी आंखों ने पहली बार सूरज की सुनहरी रोशनी देखी, मेरे कानों में पहली बार इंसानी सदा आई। आज उर्दू भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अली सरदार जाफरी की जयंती है। उन्हें 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी प्रमुख रचनाएं थी परवाज, नई दुनिया को सलाम आदि। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।